समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी नमस्कार।
हेलो सरफिरोजी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट सरफिरोजी। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई क्षेत्र की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की। कहा, सरकार आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है।
महाराष्ट्र फूड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर धनंजय मुंडे रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोस्ट।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और अन्य अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत के एफआईआर के आदेश पर रोक लगाई।
India strongly rejects UNHRC Chief Volker Turk's comments over Jammu and Kashmir and Manipur, calls them unfounded and baseless.
चीन, कनाडा और मैक्सिको के आयातों पर अमरीकी शुल्क आज से लागू।
And in ICC Champions Trophy, first semi-final between India and Australia underway in Dubai. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Safety Day and World Obesity Day.
सुरक्षा कर्तव्य है हमारा, सुरक्षित हो हर कार्य हमारा, सुरक्षा का धर्म निभाना, सुरक्षित हर रोज घर जाना।
Absolutely, and someone very famously said, Sir Firozi, make safety a reality and don't be a fatality. Every accident is a notice that something is wrong with men, methods or material. Investigate, then act. Well, National Safety Day is celebrated on the 4th of March every year. It aims to spread awareness about the importance of safety measures and accident prevention.
जी बिल्कुल अभिषेक, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा प्रबंधित ये दिवस सुरक्षित कार्य वातावरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष का विषय है सुरक्षा और कल्याण, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। इस दिन का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष भारत 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहा है, जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए 5 दशकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Yes, and in 1972, the National Safety Council of India was set up to spread awareness about workplace safety. And due to rising industrial accidents and occupational hazards, the need of setting up this council arrived. The focus was on promoting safety awareness in industrial sectors initially, which later expanded to the National Safety Week in 1986.
बिल्कुल अभिषेक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में बहुत कदम उठा रहा है और आज के समय में इसकी बहुत जरूरत भी है, क्योंकि जहां एक ओर भारत हर क्षेत्र में प्रगति करके विश्व में अपनी पहचान बना रहा है, तो वहीं दुर्घटनाओं, खासतौर पर सड़क हादसों के मामले में भारत का रिकॉर्ड अब भी खराब बना हुआ है। पिछले दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि परिवहन मंत्रालय के कई प्रयासों के बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है, बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है। अभिषेक, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कोई प्रशासन या मंत्रालय कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, जब तक समाज और लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। और इन सड़क हादसों में इजाफे के पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो व्यवहार है वो भी एक कारण है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग इतने बेसब्र हो गए हैं कि कुछ सेकेंड्स रेड लाइट पे वेट करने की जगह वो रेड लाइट को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि हमारे लिए अपनी और दूसरे लोगों की जिंदगी से प्यारे वो चंद सेकंड्स हो जाते हैं। और अक्सर हमें मना किया जाता है कि हम ड्राइविंग करते हुए फोन का इस्तेमाल ना करें या दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर ओवर स्पीड ना करें, लेकिन हम इन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं और इसका ही ये नतीजा होता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं। तो हम कैसे ऐसे उपाय करें जिससे सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसी उद्देश्य से भारत में 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव में सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाता है।
Yes, and the key focus areas on which we need to focus are making sure that safety knowledge is accessible for everyone and promotes occupational safety and health practices, integrates safety measures into work culture and encourage the workspaces to go beyond compliance.
बिल्कुल अभिषेक, और सिर्फ नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग इन नियमों का पालन भी करें, लोग इन कदमों को अपनी जिंदगी में अपनाएं भी।
Absolutely, and the observance of National Safety Day 2025 holds significant importance in improving occupational health, workplace safety and environmental protection. The campaign benefits industries and workplaces, encourages safety training programs for employees, promotes accident prevention measures in high-risk industries like construction, manufacturing and mining, and ensures compliance with occupational safety and health standards.
और ये दिन सड़क सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा सहित सुरक्षा को नजरअंदाज करने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाता है और लोगों को प्राकृतिक और औद्योगिक आपदाओं के खिलाफ एहतियाती उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
Yes, Sir Firozi, and all organizations can hold several key activities like firstly workplace safety initiatives, conducting safety audits and risks assessments, organizing fire safety drills and first aid training, implementing new safety policies and revising existing ones. Then secondly, we have the road safety campaigns, promoting helmet and seat belt use, organizing safe driving workshops and awareness parades, and encouraging traffic rule compliance through public outreach programs.
और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के दिन कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें सुरक्षा पोस्टर, बैनर और पैम्फलेट वितरित करना भी शामिल होता है। इसके अलावा सुरक्षा चुनौतियों और समाधानों पर सेमिनार और पैनल चर्चाएं आयोजित की जाती हैं।
Yes, and so to close our discussion on the first topic of the Dateline segment, I'd like to leave our listeners with these words. Remember, safety isn't expensive, it's priceless. Well, moving on to our second topic in a Dateline section, that is World Obesity Day. And let's start with the words of Richard Carmona, who said, if childhood obesity epidemic remains unchecked, it will condemn many of our kids to shorter lives, as well as the emotional and financial burdens of poor health. So, Sir Firozi, obesity is now rising the fastest in lower and middle income countries, isn't it?
बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि मोटापा अब सिर्फ पश्चिमी देशों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि ये समस्या पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन रही है और भारतीय आबादी भी इसका तेजी से शिकार बनती जा रही है। और भारत में भी न सिर्फ एक पर्टिकुलर उम्र के लोग बल्कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मोटापे का शिकार हो रहे हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में मोटापे के मुद्दे को उठाया था।
अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना।
Yes, and Prime Minister Narendra Modi has stressed that in order to become a fit and healthy nation, the problem of obesity has to be dealt with. As per World Health Organization, obesity is a chronic complex disease defined by excessive fat deposits that can impair health.
और अभिषेक, अगर मोटापे के कारणों की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो कारण मोटापे का माना जाता है वो आमतौर पर ये होता है कि हमारे शरीर को दिन भर काम करने के लिए जितनी कैलोरीज यानी जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, अगर हम उससे ज्यादा अपना कैलोरी इनटेक लेते हैं और उन एक्सेसिव कैलोरीज को बर्न ना करें तो वो हमारे शरीर में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। और इसके अलावा शारीरिक गतिविधियां अगर हम ना करें, अगर आलसीपन आजकल लोगों में बहुत है या कुछ वर्क कल्चर कल्चर इस तरह का हो गया है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिलता है, तो जो एक्सेसिव कैलोरीज हम कभी कभी ले लेते हैं अपने डेली के जो मील में, उसे हम जब बर्न नहीं कर पाते हैं तो वो ही हमारा वजन बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा कुछ लोगों में अनुवांशिक कारण के वजह से वजन और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित ये चीजें करती हैं।
Yes, absolutely. And obesity can lead to increased risk of type 2 diabetes and heart disease. It can affect bone health and reproduction. It increases the risk of certain cancers. Obesity influences the quality of living, such as sleeping or moving. And the global rise in obesity since 2010 is strongly correlated with increased consumption of unhealthy foods. In particular, it has been linked with the shift to diets high in ultra-processed food during the same period and the consumption of sugar-sweetened beverages.
बिल्कुल अभिषेक, और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें हम देखते हैं कि सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फैट बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और अभी आपने बताया कि शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो इन सब के कारण जब इन फूड्स को हम कंजप्शन करते हैं तो ये हमारा वजन बढ़ाने में योगदान देते हैं। और हाल के विश्लेषणों से ये भी पता चला है कि सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक का अधिक सेवन करने से सालाना 20 लाख से अधिक टाइप 2 मधुमेह के मामले और 10 लाख से अधिक हृदय रोग के मामलों में ये चीजें योगदान देती हैं।
Yes, and estimates by the Food and Agriculture Organizations of the UN suggest that the consequences of consuming diets rich in highly processed foods and low in plant-based foods are costing the world over $6 trillion annually in poor health, along with further costs to the environment and to social well-being. And weight is one indicator of obesity, but treating obesity is about improving overall health, not just about losing weight. It is possible for a person with higher body mass index to be managing the disease and living a healthy weight. And Mr. Modi cited a study which found that one in every 8 people today is obese, and cases of obesity have doubled in the past years. He termed it worrisome that the problem of obesity has increased fourfold among children. And so to close our discussion on the obesity, Sir Firozi, it's about time that it's about taking time before food goes in your mouth to be aware. And am I aware that I'm eating this? Like, you have to be very aware of what you're putting inside your mouth. And am I eating it because I'm hungry or because I need to soothe myself? And don't work out because you hate your body. Work out because you love it.
और श्रोताओं, अब आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है।
Yes, 4th March marks the day when INS Vikrant, one of the most important aircraft carriers to serve the Indian Navy, was commissioned as Vikrant in his first avatar in 1961. Decommissioned in 1997, a model of INS Vikrant stands tall today in Mumbai. Over to our Mumbai correspondent.
INS Vikrant, the giant aircraft carrier, was launched on 22nd September 1945 as Hercules. However, things did not go as planned. To elaborate on the story, we have Commander H.S. Rawat, the last commanding officer on board INS Vikrant.
Vikrant got commissioned in UK. It was built by the Royal Navy during the Second World War. It was called HMS Hercules. Unfortunately, before the ship could be built and go for operation, the war had ended. So they put them in cold storage till the time the Indian Navy thought about a carrier. And that is how the Navy homed on to this carrier. And we had the first captain of the ship, Captain Mahindru. And she came and became part of the Indian Navy in 1961. Everybody in India also knew the Indian Navy by the aircraft carrier called Vikrant.
The 9,500-ton carrier INS Vikrant was the first ever carrier of an Asian country and remained so for a long time. During the 1971 Bangladesh War, INS Vikrant played a crucial role leading to the birth of Bangladesh. INS Vikrant was decommissioned from active service on 31st January 1997 after more than 3 decades of invaluable service. Commander Rawat fondly recalls this moment and the aftermath.
It was a very, very touching ceremony, and we had all the commanding officers who had served on board, including the first commanding officer, Admiral Mahindru. Now, once he got decommissioned, it was decided to scrap. It was sold to a scrap dealer who sold the metal of Vikrant to Bajaj, who made it into a motorcycle. The fuel tank of that motorcycle was made from the steel of INS Vikrant.
Mumbai shares a deep connection with INS Vikrant as it was based in this very city throughout its commissioned service. Therefore, the 9-meter-long model of INS Vikrant, located at Regal Circle in Colaba, is a testament to the long maritime connection and rich heritage of Mumbai. As the old saying goes, old ships never die, they fade away to be resurrected in another avatar. INS Vikrant was indeed reborn and commissioned into the Indian Navy, but the charm and significance of the original INS Vikrant still resonates through the history of India's maritime journey and will continue to do so. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
अभिषेक, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है. हमारा देश एक ऐसा देश है जहां एक ही त्यौहार को कई तरीकों से मनाया जाता है. हाल ही में हमने महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़ी श्रद्धा से मनाया और भारत के असंख्य महाशिवरात्रि समारोह में से आज हम आंध्र प्रदेश के महाशिवरात्रि समारोह की बात कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश के कोटप्पा कोंडा में प्रभालु जुलूस अपनी भव्यता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है. पड़ोसी राज्यों से भी लोग इस भव्य जुलूस के लिए इकट्ठा होते हैं. आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट.
Each year during Mahashivratri, the tranquil hill of Kotappakonda in Andhra Pradesh transforms into a vibrant hub of devotion and cultural expression. Central to these festivities is the Grand Prabalu Procession, a breathtaking spectacle where villages from the Palnadu region and beyond craft towering, elaborately decorated structures known as Prabalu. These impressive edifices, some reaching heights up to 100 feet, are adorned with vivid colors, intricate designs, and illuminated with electric lights, reflecting the community's deep-rooted devotion and artistic prowess. The procession is a mesmerizing display of unity and spiritual fervor. Each village presents its unique prabha, showcasing distinct themes and craftsmanship. Devotees carry these towering structures through the streets, accompanied by traditional music and dance, culminating at the Sri Trikoteswara Swami Temple atop Kotappakonda Hill. This age-old tradition not only honors Lord Shiva but also strengthens social bonds as communities come together in collective effort and celebration. The Prabalu procession stands as a testament to the enduring cultural vibrancy of Kotappakonda, drawing countless devotees and tourists eager to witness this grand celebration. Sai Sisla for Parikrama, Akashvani, Vijayawada.
The Central Bureau of Film Certification in Bangalore had organized a hands-on experience workshop in trailer making for the students of cinematography, animation and games in the Jain deemed to be university in Bangalore yesterday. We have more from a correspondent.
The hands-on experience workshop in trailer making at the Jain deemed to be university in Bengaluru today was extended to 62 students. CBFC, the Film Certification Bureau of the Ministry of Information and Broadcasting, has collaborated with Netflix, Viki and Samagra Sikshana Karnataka to organize orientation workshops and create awareness about the Waves India Challenge in content creation. The Regional Director of CBFC in Karnataka, Ashwant Shahanai, has provided this information on the activities taken up by them under Waves.
Today we have gathered here in Jain College. You know, we are organizing a workshop on trailer making competition as a part of Waves. Waves is a World Audio Visual Entertainment Summit organized by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, in association with industries. This is a first of its kind, a global event where participants not only from India, from across the world. As of now, I think we have received a more than 1 lakh entries, registrations for 33 challenges under Creating India Challenge Season 1. You know, I would like to invite the youngsters, filmmakers and all the stakeholders from the media and entertainment industry to come in large numbers, participate in large numbers, so that we will make the event successful.
The director of the Cinema Production Institute in Deemed to Be University, Dr. Sagar Gulati, has spoken to Akashwani News on the exposure that the students of their college got today in the workshop and Waves Challenge.
We are very fortunate that the government officials have chosen our campus to conduct this awareness workshop. I am sure that students must have gained the level of exposure.
The World Audio Visual and Entertainment Summit, Waves in short, to be held in Mumbai from May 1st to 4th, is set to bolster India India's media and entertainment industry and extend its global influence. The Create in India Challenge Season 1, which are 33 in number, are poised to become a significant platform for icons of the media and entertainment fraternity worldwide, focusing on entertainment, economics and technology. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि भारत में वैश्विक भूख की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है और सरकार देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। श्री पासवान ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण के उद्घाटन सत्र के दौरान ये बात कही। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि निकट भविष्य में दुनिया के हर खाद्य बाजार में कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि भारत के विजन को पूरा करने के लिए सभी हितधारक महत्वपूर्ण हैं। आहार मेले पर प्रकाश डालते हुए भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला ने कहा कि इस वर्ष 22 देशों सहित 1700 से अधिक प्रदर्शक मेले में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय मेले में 1 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक प्रदर्शक अभिषेक ने मेले के आयोजन और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। और अब चलते हैं खेल के मैदान में और वहां की भी हलचल लेते हैं।
In men's cricket, Australia were 182 for 4 in 34 overs against India in the first semi-final of the ICC Champions Trophy at Dubai a short while ago. And moving on to some business news today, Sir Firozi, the benchmark domestic equity indices closed lower today. At the end of the session, the Sensex was down 96 points or 0.1% at 72,989 and the Nifty was down 36 points or 0.2% at 22,082. The domestic stock markets has experienced a significant correction due to continued FII sellings and trade-related uncertainty. And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember freedom fighter Ripudaman Singh, who was born on the 4th of March 1883. Son of Maharaja Hira Singh of Nabha, he was nominated as a member Imperial Legislative Council during 1906 to 1908. He was generally critical of the British and voted against the Seditious Meetings Bill. After the death of his father in December 1911, Ripudaman Singh returned to Nabha and ascended the throne in January 1912. As a king, Ripudaman Singh adopted an independent stance in his dealings with political officers and lieutenant governors. He appointed the Congressite Purushottam Das Tandon as chief minister and engaged a pro-Congress barrister, Sir Eardley Norton. He insisted on the treaty rights and autonomy of princes in the princes' conferences.
He overlooked the presence of Gadarites in his territories and donated money towards the founding of Banaras Hindu University. He presided over a session of the Tilak School of Politics and contributed to the Tilak Swaraj Fund. He gave financial support to pro-Congress papers like the Bombay Chronicle and the Indian Daily Herald and interacted with the national leaders like Gokhale, Malviya, Lajpat Rai and Motilal Nehru.
During the Akali movement in Punjab, Ripudaman Singh observed the Martyrs' Day to honour all those who laid down their lives at Nankana Sahib.
After a manipulated political inquiry, Ripudaman Singh was forced into dissociating himself from the Nabha administration and sent subsequently to Dehradun.
The issue of his restoration was taken up by the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee and the Shiromani Akali Dal, which developed into a prolonged agitation during 1923 to 1925 called the Jaito Morcha. The Indian National Congress also passed resolutions in support of Ripudaman Singh.
After the enactment of Gurudwara legislation and withdrawal of Akali agitation in 1925, Ripudaman Singh was deposed formally in 1928 and sent to Kodaikanal in Madras Presidency as a political prisoner. Several national leaders tried to secure his release, but the government remained adamant on the plea of his disloyalty. Ripudaman Singh was all alone in Kodaikanal when he died in December 1942 after a long and persistent fight for freedom.
Freedom fighter Bulusu Sambamurthy, who was born on the 4th of March 1886 in Godavari district of the erstwhile Madras Presidency. He was inspired by a speech by Konda Venkatappaiah Pantulu and gave up his law profession to join the non-cooperation movement in 1920.
Sambamurthy was a true Gandhian and adopted Gandhian principles in everyday life. In 1923, he became a member of the organizing committee of the Kakinada session of the Indian National Congress. He was one of the first leaders to demand Purna Swaraj.
In April 1930, he participated in a salt satyagraha at Cholangi near Kakinada and was arrested. He stood in the 1937 Madras Assembly elections and was elected the president of the Madras Legislative Council. He served from 1937 to 1942 when he resigned due to the outbreak of the Quit India movement.
Sambamurthy was also connected with the Andhrodyamam, Andhra movement. When Potti Sri Ramulu decided to fast unto death at Madras in 1952 on the issue of formation of Andhra province, Sambamurthy placed his residence at his disposal. We salute the great patriot.
We also remember Indian National Army member Deep Singh. Born in Haryana, Deep Singh joined the INA voluntarily as a sepoy and served in the 3rd Guerrilla Regiment. He was killed while taking part in the fighting against the British in Burma on the 4th of March 1944. We salute the great martyr.
श्रोताओं, आज हम अभिनेता इफ्तिखार को भी याद कर रहे हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है. इन्हें खासतौर पर फिल्मों में अपने पुलिस अफसर के दमदार किरदारों के लिए जाना जाता है. अपने फिल्मी करियर में इन्होंने राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक के साथ पर्दे पर अभिनय किया और अपनी अदाकारी से गहरी छाप छोड़ी. इफ्तिखार ने करीब 400 फिल्मों में काम किया.
देखो, ये राज का डॉन मर चुका है, अब मेरे सिवा सिर्फ तुम जानते हो. और ये राज के तुम डॉन नहीं हो, कोई और हो. तुम्हारे सिवा अब सिर्फ मैं जानूंगा. डॉन के साथियों की तरह पुलिस भी तुम्हें डॉन ही समझेगी.
अब कहीं मुझे पुलिस वालों ने डॉन समझ के पकड़ लिया था, मैं तो गया ना 12 के भाव में.
उसके लिए मैं हूं ना. तुम्हारी मदद से पुलिस जब उन लोगों को पकड़ लेगी तो मैं कह दूंगा कि तुम डॉन नहीं हो, तुम मेरे आदमी हो, इन्फॉर्मर हो.
Yes, and Jyotindranath Tagore passed away on this day in 1925. He was a playwright, musician, editor and painter from Bengal. He played a major role in the flowering of the talents of his younger brother, the first non-European Nobel Prize winner, Rabindranath Tagore. And also Sarfirozi Dina Pathak was born on this day in 1922. She was an Indian actress and director of Gujarati theatre and also a film actor. She was an activist and president of the National Federation of Indian Women, a doyen of Hindi and Gujarati films, as well as theatre. Dina Pathak acted in over 120 films in a career spanning over 6 decades.
जी अभिषेक, और 80 के दशक के सबसे चर्चित टीवी शो मालगुडी डेज में भी दीना पाठक नजर आई. और आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक संवाद.
जो हमारे यहाँ होता है वो तुम्हारे यहाँ होता है, तो ये क्यों सोचती हो कि जो तुम्हारे यहाँ होता है वही हमारे यहाँ होना चाहिए?
माँ, कल सुबह डॉक्टर जोशी आ रहे हैं चेकअप करने के लिए.
किसका चेकअप होना आंटी जी? सबका, यहाँ महीने में एक बार सबका चेकअप होता है.
हम फणीश्वर नाथ रेणु को भी याद कर रहे हैं जो उपन्यासकार कथाकार थे. इन्होंने 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर भाग लिया और इस कारण जेल भी जाए. इनके व्यक्तित्व का विकास एक सजग नागरिक और देशभक्त के साथ ही एक सृजनात्मक लेखक के रूप में भी होने लगा. फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी साहित्य में एक आंचलिक युग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है. उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसपूर्ण चित्र खींचा है. इनकी लिखी कहानी तीसरी कसम पर फिल्म भी बनाई गई.
दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और मैला आंचल, परती, जुलूस, ठुमरी, एक आदिम रात्रि इनकी मुख्य रचनाएं हैं।
Yes, and Sir Kenneth Matheson Dalglish was born on this day in 1951. He's a Scottish former football player and manager. He's regarded as one of the greatest players of all time, as well as one of Celtic's, Liverpool's and Britain's greatest ever player. Dalglish won the Ballon d'Or Silver Award in 1983, the PFA Players Player of the Year in 1983, and the FWA Footballer of the Year in 1979 and 1983.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।